The title of my message is When We See Him.
और आज के संदेश का शीर्षक जो रहेगा वो है जब मैं परमेश्वर को देखूंगे.
When we see him whom?
और जब हम परमेश्वर के किसको देखेंगे?
Bible says that beloved in 1 John chapter 3 2 and 3 beloved now we are children of God and it has not appeared as what we will be. We know that when he appears we will be like him because we will see him just as he is. And everyone who has this hope fixed on him purify himself just as he is pure.
पहला योहन्ना तीसरा अध्याय 2 और 3 वचन. हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे. इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है. और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है.
One of the glorious truths of the Christian faith is the Lord's second coming.
और मसीही जीवन में जो महिमामय सत्य है वो है यीशु मसीह का दूसरी बार आना.
एंड इट इज स्पेशली ट्रू फॉर दोस हु फेथफुली मेक देयर बेस्ट परस्यू डेली लाइफ टू बी लाइक जीसस एंड एंजॉय द इंटीमेट रिलेशनशिप विद जीसस.
और ये उनके लिए सत्य बात है जो विश्वास योग्यता के साथ बड़ी निकटता के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं.
एंड स्पेशली दिस इज अ होप. We all try to be like Jesus, but we are in that progression. We are in that way, but that scripture says that when we see him, we will be like him.
और हमारे पास ये आशा है कि सब हम यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं, लेकिन हम उस प्रक्रिया के अंदर है कि जब हम उसे देखेंगे, हम उसके समान बन जाएंगे.
When he appears, we will be like him because we will see him just as he is.
और जब हम उसे देखेंगे, हम उसके समान बन जाएंगे क्योंकि हम उसे देखेंगे जैसा वह है.
So this is a tremendous hope and anticipation for us.
और ये बहुत ही बड़ी एक आशा की बात हमारे लिए है.
And the perfection of our likeness of Jesus that happens when we see him.
और यीशु मसीह के समान हम तब बन जाएंगे जब हम उसको आमने सामने देखेंगे.
And it says that and everyone who has this hope fixed on him will purify himself as he is pure.
और ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है.
Generally speaking, believers who have paid a cost for their faith, who have undergone tribulation, persecution, they have the coming of Jesus something of especial value to them.
और जो विश्वासी जिन्होंने अपने विश्वास के खातिर एक कीमत को चुकाया है, सताव से गुजरे हैं, परमेश्वर के सामने उनके लिए एक प्रतिफल है.
They eagerly wait for his coming and they anticipate his coming, they hope for his coming, they pray for his coming.
और वे लोग हैं जो परमेश्वर की आने की बाट जो रहे हैं, वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं.
And God wants our life also like that.
और परमेश्वर चाहते हैं हम भी उसी प्रकार जिए.
When we think about the Lord's coming, there should be an anticipation, there is an excitement.
और जब यीशु के आगमन के बारे में सोचते हैं तब हमारे अंदर एक उत्साह होना
and
चाहिए.
That is something which we are looking forward.
और उसी की बाट हम आगे जोते हैं.
But those who are little sloppy, live a relative comfort, for them it may not make much sense.
और जो बेदरकार आराम से जीवन जीना चाहते उनके लिए ये कोई बड़ी बात या उनके लिए उत्साह की बात नहीं हो सकती.
We can look around when all through the ages Christians always used to debate and discuss about the timing of Jesus coming.
और हम सारे पिछली सदियों में देख सकते कि मसीह लोगों ने कई बार विवाद किया है यीशु के आगमन के विषय पर.
There will be a series of studies and analysis and everything looking about when everyone is interested when he will come.
और बहुत सारे अभ्यास विवरण और तर्क वितर्क हुए कि कब यीशु मसीह का आना हो सकता है.
And Jesus disciples also had the same question, pointedly asked him, Lord, when you will come?
और यीशु के शिष्य उनके पास भी यही प्रश्न था, वो पूछते कि कब तेरा आना होगा.
In Matthew 24:3 Jesus disciples asked him, tell us when will these things happen and what will be the sign of your coming.
मत्ती 24:3 में लिखा है कि हमें ये बातें कि कब होगी तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा.
सो वी कैन इवन सी नाउ पीपल इट्स गुड टू नो व्हेन ही विल बी कमिंग.
और ये बात को जानना बहुत अच्छी बात है कि कब यीशु का आना होगा.
बट इट्स गुड टू अंडरस्टैंड हाउ जीसस आंसर्ड दैट क्वेश्चन.
लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कैसे यीशु ने इस उत्तर को दिया.
जीसस डिड नॉट गिव अ कैलेंडर डेट. सो एंड सो मंथ सो एंड सो ईयर सो एंड सो डेट आई एम गोइंग टू कम.
और यीशु मसीह ने कोई कैलेंडर का तारीख महीना नहीं दिखा कि ये तारीख को मैं आने वाला हूं.
बट ही गेव इंडिकेशंस.
लेकिन उसने कुछ चिन्हों को दिया.
सच एज वॉस पेस्टिलेंस अर्थक्वेक ट्रिबुलेंस ट्रिबुलेशंस.
और यीशु मसीह ने जैसे कहा कि वहां पे अर्थक्वेक होंगे, बहुत सारी विपत्तियां होंगी.
Countries having war against other countries.
और एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेंगे, युद्ध होंगे.
The budding of Israel, the nation.
और इसराइल जो होगा उसका विनाश.
And all these indications Jesus gave.
और ये सारे चिन्ह यीशु मसीह ने दिए.
But he never gave an exact date.
लेकिन यीशु ने कोई चिन्ह कोई तारीख नहीं दिया.
And Jesus told, when you two, when you see these things around, recognize that he is near, right at the door.
और जब तुम इस रीति को सब बातों को देखते हुए जानोगे तो जान लोगो कि उसका आना निकट वरन द्वार पे ही है.
एंड ही ऑल्सो सेड दैट इन बट ऑफ दैट डे एंड दैट आवर नो वन नोस नॉट इवन द एंजल्स ऑफ हेवन नॉर द सन बट द फादर अलोन.
और 36 वचन, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र परंतु केवल पिता.
एंड ही ऑल्सो सेड दैट फॉर द कमिंग ऑफ द सन ऑफ मैन विल बी जस्ट लाइक द डेज ऑफ नोआ.
और जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा.
People's attention was more or less on giving and taking, selling, buying, marrying, all those attention was on this. Suddenly the Noah's time what happened? And Jesus said it, the coming of Son of Man will be like that.
और उस समय नूह के समय के समान वो समय होगा जो लेना खरीदना देना ब्याह करना ये सारी चीजें होगी.
In 1 Thessalonians chapter 5 also, 1 Thessalonians chapter 5 also, verse 2.
Pehla Thessalonians 5:2.
For you yourself know full well that the day of the Lord will come just like a thief in the night.
क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो, जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है.
So what was Jesus trying to say?
और यहाँ पर यीशु क्या कहना चाह रहे हैं?
Even to the pointed questions of his disciples.
और वो अपने शिष्य और मसीह को भी यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं.
Now to us.
और वो हमें भी कह रहे हैं.
Jesus want his disciples to ready always.
यीशु चाहते कि उसके शिष्य हमेशा तैयार रहे.
He need not come necessarily like when we are all together fellowshipping, singing, worshiping time on a good nice Sunday morning.
और ऐसा कोई रविवार के समय नहीं आना होगा जहां पर हम लोग संगति कर रहे, गाना गा रहे, बजा रहे, संगति कर रहे.
But Jesus want all of us to be ready.
लेकिन यीशु चाहते हैं हम सभी उसके लिए तैयार रहे.
He can come at any time like a thief.
और वो चोर के समान कभी भी आ सकता है.
Thief doesn't give an advance warning.
और जो चोर है जो कभी भी आने के समय चेतावनी नहीं देता है.
So that is the answer Jesus gave to his disciples. It's good to keep in our heart.
और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये उत्तर दिया, इसको हम अपने ध्यान में रखें.
By what is happening around us situation we can indicate as Jesus said he is right there at the doorstep. We can see the closeness or the time has come that we can see.
और हमारे आसपास की घटनाओं के द्वारा ये संकेत हमें मिल सकता है कि यीशु मसीह द्वार पर ही खड़ा है और वो जल्द आने वाला है.
That should generate an interest and earnestness in our own lives.
और ये सारी घटनाओं से हमारे जीवन में एक रुचि उत्पन्न होनी चाहिए.
But we do not know the exact date.
लेकिन हमें वो समय नहीं पता.
Jesus did not choose to give that exact date.
और यीशु मसीह ने वो समय वो तारीख नहीं बताया.
Maybe with a purpose. He wants us to be ready every day.
उसके लिए एक उद्देश्य हो सकता है. शायद यीशु चाहते कि हम हर समय हम तैयार रहे.
Not just on Sundays.
और केवल रविवार के दिन नहीं.
That's why we often say for us Monday to Saturdays are more important.
और जैसे हम कहते हैं कि सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारे लिए महत्व के दिन होते हैं.
And actually Jesus said, in Matthew 24 and 25 there are many interesting illustrations Jesus said.
और मत्ती 24 में यीशु ने कई सारे दृष्टांत में कहे.
For example, he said that when two women will be grinding, one will be taken. And other will be left out.
और दो स्त्रियां हैं जो अनाज को दल रहे, वो एक ले ली जाएगी, वो एक पीछे रह जाएगी.
So that setting is not a Sunday meeting setting. People are natural in middle of a normal day.
और वो के रविवार का समय नहीं है, लेकिन एक सामान्य दिन है जहां लोग अपने कार्य में हैं.
So let us have that desire in our love and that longing. To be ready always.
और हमारे जीवन में ये इच्छा को हम रखें कि हम हमेशा उसके आने के लिए तैयार रहे.
So leaving the timing part, Jesus emphasized very important three important things about his coming.
और समय को छोड़ने के बाद यीशु मसीह ने तीन चीजों पर ज्यादा महत्व दिया है.
I just want to highlight that.
और उस पर मैं चर्चा करूंगा.
First of all, exact date we do not know, none of us know.
और एक पर एक उसका समय तारीख हमें नहीं पता है।
Jesus told three things to be taken care.
लेकिन यीशु ने तीन बातों में सावधान रहने को कहा है।
One is readiness.
पहली चीज है तैयार रहना।
He wants us to be ready always.
यीशु चाहता है कि हम हमेशा तैयार रहे।
And you can expect that just like a normal ordinary day, that is the day of Jesus coming.
और कोई भी सामान्य दिन होगा तब यीशु का आना हो सकता है।
We read in Matthew 24:42 what Jesus said.
और मत्ती 24:42 में ऐसा लिखा है।
24:42. Therefore, be on the alert, for you do not know which day the Lord is coming.
इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा।
And again in 44, chapter 24, 44, he said, for this reason you must also be ready, for the Son of Man is coming at an hour when you do not think he will.
इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा।
So Jesus himself told his disciples that a son of man will come on a day when you think he will not come.
और यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि मनुष्य का पुत्र यीशु तब आएगा जब आप नहीं सोच रहे कि वो आएगा।
And be on the alert then, for you do not know when the day nor even the hour.
और वो सावधान हमें रहने के लिए कहा गया है क्योंकि वो घड़ी हम नहीं जानते हैं।
So let us remember that this is one thing Jesus told his disciples. You don't too much worry about which day, which hour I'll come, but you worry about your readiness.
और यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि कौन सी घड़ी आना है, कौन से समय, उस चीज की चिंता ना करें, लेकिन हमेशा आप तैयार रहे।
Suppose you know exactly which moment, which day, which minute you'll come, but we are not ready. What is the point?
और हम अगर पता चले कौन से घड़ी वो आने वाला है समय, अगर हम तैयार नहीं है तो उसका क्या मतलब?
So the importance is on our readiness, not on the day or hour of his coming.
महत्व इस बात पर है कि हम तैयार रहे, न कि समय और तारीख पर।
So that is the first thing he told, the readiness.
और पहली चीज जो यीशु ने कहा कि तैयार रहना।
Second thing is, interestingly, another thing he mentioned in Matthew chapter 24 is, which we would not normally expect.
और 24 अध्याय के अंदर दूसरी भी एक चीज यीशु ने कही जो शायद हम अपेक्षा नहीं करते उसकी।
That is about maintaining a reasonable interpersonal relationships.
मतलब एक दूसरे के पास आरस्परिक एक संबंध को बनाए रखने के बारे में।
That is one thing Jesus mentioned in connection with his coming.
और यीशु के आने के संबंध में इस चीज को यीशु ने कहा।
In Matthew chapter 24, verse
45.
Who then is the faithful and sensible slave whom his master put in charge of his household to give them their food at the proper time? Blessed is that slave whom his master finds so doing when he comes.
अतः वह विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकर पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए।
And 48 and 49, but if the evil slave says in his heart, my master is not coming for a long time, and he begins to beat his fellow slaves and eat and drink with the drunkards, and the master of the slave will come on a day when he does not expect him, and at that hour he will at an hour which he does not know, and he will cut him to pieces and assign his place to the hypocrites.
48 वचन से आगे, परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा, उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पिसना होगा।
So here Jesus talking about a slave who is thinking, okay, the Lord is Lord's is delaying, so I can behave whatever I like. And he rudely deals with his colleagues.
और यीशु मसीह एक दास के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि वो यीशु मसीह उसके स्वामी को आने को देर है, इसकी वजह से अपने गुलामों के साथ वो अलग क्रूर व्यवहार करता है।
So this to this example Jesus was conveying a message to the people who are anticipating his coming.
और इस उदाहरण के साथ यीशु मसीह उन लोगों को एक संदेश देना चाहते जो उसकी बाट जोते हैं।
You learn to be faithful and sensible. You learn to be a faithful and sensible slave.
और यहाँ पे हमें वो कहते हैं कि तुम्हें एक विश्वास योग्य और संवेदनशील तुम्हें एक दास होना है।
And you learn with the, learn to do responsibly with the people around you.
और जिम्मेदारी के साथ एक दूसरे के साथ उस कार्य को करना है।
Maybe people in our workplace.
और हमारे काम की जगह हो सकता है,
इन एट होम,
घर पे,
इट्स अ क्वेश्चन व्हिच वी कैन आस्क आवरसेल्व्स.
और ये प्रश्न है जो हम अपने आप को आज पूछ सकते हैं.
इट्स इंटरेस्टिंग व्हेन यू नो जीसस अगेन टोल्ड अनदर एग्जांपल व्हेन समबडी केम टू डू अ सैक्रिफाइस एंड ही केम एंड ही रिमेंबर्ड दैट हिज ब्रदर हैज समथिंग अगेंस्ट हिम and the Lord told you keep your sacrifice, I'll accept it. First you do one thing, you go set right your problems with your brother, then come back, then I'll accept your sacrifice.
Aur Yeshu ne ek udaharan isi ke sath diya tha ki jahan ek bhai balidan chadhane ke liye mandir mein aaya to Yeshu ne kaha agar tere bhai ne tere virudh kuch kiya hai usko pehle tu milap aur mel milap kar aur fir hi tu is balidan ko chadha.
So the relationship we have with the people around us is very important, or God is watching that.
Aur Parmeshwar dekh raha hai ki hum aas paas ke logon ke sath kaise us sambandh ko banaye rakhe hain.
At our home and our workplaces,
hamare parivar mein, hamare kaam ki jagah par,
God expects us to be fair and dealing with everyone with responsibility.
Aur Parmeshwar chahta hai ki hum bahut zimmedari ke sath, bahut nyay ke sath ek dusre ke sath vyavhar kare,
not like the evil slave.
और इस बुरे इस दास के समान नहीं.
Just believe that Lord will delay so I can do anything and I can deal very roughly with others.
और उसे लगा स्वामी को आने में देर है और उस अन्य दासों के साथ उसने बहुत ही बुराई के साथ बर्ताव किया.
Let's keep that in our heart. The second thing Jesus said is about the relationship with the people, how we treat others.
और दूसरी चीज यीशु मसीह ने जो कही कि हम एक दूसरे के साथ संबंध, हम कैसे एक दूसरे को रहते हैं.
First one is emphasize readiness and even the example of you know that parable of 10 virgins in Matthew 24 also, it is again an example of being ready.
और पहली चीज जो हमने देखा कि तैयार रहना, 10 कुमारी का उदाहरण जो 24 अध्याय में लिखा गया है वो तैयार रहने के बारे में बताता है.
Five wise virgins came with oil and the other unwise foolish virgins came just with a lamp but without any oil.
और बुद्धिमान कुमारी उनके साथ तेल था लेकिन जो मूर्ख कुमारी थी उनके पास कुप्पी में तेल नहीं था.
They were happy just to show that nice polished lamp maybe.
वो मूर्ख कुमारी के पास एक अच्छा दिया दिखाने के लिए था.
We can also be like that. We can have something to display before others to impress others, but inside there is nothing, no life, no oil.
हम भी उसी प्रकार हो सकते हैं. बाहरी जीवन से हम औरों को प्रभावित कर सकते हैं लेकिन अंदर कोई प्रकाश नहीं है.
So through that parable Jesus was again emphasizing the question of readiness like that wise five virgins.
और इस पांच बुद्धिमान कुमारी के द्वारा यीशु इस उदाहरण के द्वारा उस तैयार रहने के बारे में वो महत्व दे रहे हैं.
The third thing Jesus emphasized in this, it's all in Matthew chapter 24, in the background into the question disciples ask, when are you going to come?
और यीशु मसीह 24 अध्याय के पूरे अध्याय में पृष्ठभूमि में उस शिष्यों का जो प्रश्न है कि कब आना होगा उसका उत्तर दे रहे हैं.
So the third thing Jesus said is about faithfulness.
तीसरी चीज यीशु उत्तर देते हैं कि विश्वास योग्यता.
The very familiar, you know, that parable of the 10 talents, parable talents.
और यहाँ पे हम बहुत ही एक उदाहरण को देखते हैं कि 10 तालंतों के बारे में.
We know that story. A master, when he went away to far country, he called three servants and gave one. He gave five. Another he gave two. Another he gave one.
इस कहानी को हम जानते हैं, दृष्टांत को जानते हैं. जब स्वामी बाहर को जा रहा था उसने अपने दासों को एक को पांच, किसी को दो और किसी को एक ऐसे तालंत दिए.
And he expected them to be faithful, work with that what was invested in them.
और वो चाहता था कि वो उसके साथ विश्वास योग्य रहे, उसके साथ कार्य करे.
But when he came back, the five, the one, the servant who received five came with another five.
लेकिन जब वो आया और उसके स्वामी ने उसका लेखा जब लिया, जिसके पास पांच थे उसने 10 उसको दिए वापस.
And he told master, you entrusted five talents to me. See, I have gained five more talents.
और वो कहता है कि तूने मुझे पांच तोड़े सौंपे थे, देख मैंने पांच तोड़े और कमाए हैं.
His master said to him, well done, good and faithful slave.
और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास.
You are faithful with few things.
तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा.
I will put you in charge of many things.
मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा.
Enter into the joy of your master.
अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो.
It's worth meditating. It's a beautiful expression.
ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर एक कथन है.
Think about the day when the little things God has entrusted us, we work on that and we can say that, show to the Lord. Lord, you gave me them. I was not lazy in that. I worked in that area. What you invested in my life, and here it is.
और सोच के देखिए, इसी प्रकार परमेश्वर ने जो तालंत, जो बातें हमारे जीवन में देखी है, हम प्रभु के सामने कह सके, प्रभु जो तालंत तूने मुझे दिए थे उसको प्रभु मैंने इस कार्य में आलसी न हुए बिना इसको कार्य में लाया हूँ.
So the master could tell your good and well done faithful and well done good and faithful servant, you are faithful in few things.
Aur tab swami kahega dhanya hai acche aur vishwasyogya das, tu thode mein vishwasyogya raha.
The slave, the servant with who received two also came with he worked on that two, brought another two.
Aur jo das jisko do talent mile the usne us par karya karke aur do lekar aaya.
And the master said the exactly the same thing.
Aur swami ne aur ek bar wahi shabd kahe usse,
you are good and faithful.
धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास.
एंड यू वेर फेथफुल लिटिल थिंग्स,
और तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा.
एंड एंटर इनटू द जॉय ऑफ योर मास्टर,
और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो.
बट द थर्ड सर्वेंट हु रिसीव्ड वन,
और तीसरा जो दास था जिसे केवल एक तालंत मिला था,
एंड व्हाट डिड ही डू,
उसने उसके साथ क्या किया?
ही हिड, डग एंड हिड दैट वन टैलेंट विच हिज मास्टर गेव.
और स्वामी ने जो उसको तालन दिया तो गड्ढा खोद कर उसमें उसे गाड़ दिया.
एंड ही इज इवन अक्यूजिंग द मास्टर, मास्टर आई न्यू दैट यू आर अ हार्ड मैन, रीपिंग वेयर यू डिड नॉट सो एंड गैदरिंग वेयर यू स्कैटर्ड नो सीड.
24 वचन, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है.
एंड आई वॉज अफ्रेड एंड आई वेंट अवे एंड हिट द टैलेंट यू गेव एंड सी हियर हियर इज यूअर्स.
इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया और देख वो ये रहा.
एंड द मास्टर सेड यू विकेट एंड लेजी स्लेव, यू न्यू दैट सो दैट यू विकेट एंड यू लेजी स्लेव.
स्वामी ने उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास.
सो व्हाई द मास्टर वाज अपसेट,
और क्यों स्वामी यहाँ पर नाराज था उस पर?
द servant from the servant who had one talent, their master did not expect he should bring another five.
और जब स्वामी ने उसे एक तालन दिया तो स्वामी की यह अपेक्षा नहीं थी कि वो एक से पांच कमाए.
He did not even expect that he should bring two.
और सिर्फ यह अपेक्षा होगी कि एक से दो करे.
He expected corresponding to what was given.
लेकिन उसके साथ वो वार्तालाप या उसका वो प्रत्युत्तर करे जो उसे एक दिया गया था.
It's an important thing. The Lord is expecting faithfulness according to what is invested in us.
और परमेश्वर चाहता है कि जो बातें हमारे जीवन में दी गई है उन बातों के लिए हम विश्वास योग्य पाए जाए.
Something which we have to reflect and meditate.
इस चीज पर हमें मनन करना है और देखना है झांक कर.
The little things that is entrusted, are we faithful there?
और जो छोटी बातें परमेश्वर ने हमें दी है क्या हम उसके लिए विश्वास योग्य है?
This is what the master expected.
और यही स्वामी अपेक्षा कर रहा.
And remember, this is what Jesus said in the background of his second coming.
और यीशु मसीह ने पृष्ठभूमि में जो उसके आने के बारे में यही कहा.
And when we are thinking about the Lord's coming, we can also think about am I faithful in the little things God has invested in.
और जब हम यीशु के आगमन के बारे में सोचते तो हम जांच कर देखें कि क्या छोटी छोटी बातों के विषय में मैं क्या विश्वास योग्य हूँ.
Master did not give everyone five.
और स्वामी ने हर किसी को पांच तालंत या तोड़े नहीं
दिए.
और किसी ने, स्वामी ने किसी को पांच, दो और एक इस प्रकार दिया. और वो इसी अपेक्षा के साथ कि जो कुछ तुम्हें दिया गया है आपके विश्वास और दान के अनुसार उसके साथ हम विश्वास योग्य रहे.
सो फेथफुलनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
और विश्वास योग्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है.
सो लेट अस टेक टू हार्ट दिस थ्री थिंग्स दैट द लॉर्ड सेड अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ हिज सेकंड.
तीन चीज को याद रखें जो यीशु ने अपने आगमन के बारे में संबंधित कहा.
फर्स्ट थिंग इज अबाउट आवर रेडीनेस.
पहली चीज यीशु ने कहा तैयार रहने के बारे में.
सेकंड थिंग इज द रिस्पॉन्सिबल फेयर डीलिंग्स विद वन अनदर, रिलेशनशिप विद वन अनदर.
और दूसरी चीज जो एक दूसरे के संबंध के अंदर हम कितने न्याय और अच्छे है.
एंड द थर्ड थिंग इज द फेथफुलनेस इन लिटिल थिंग्स.
और तीसरी चीज की जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसके प्रति विश्वास योग्यता.
दीस आर द थ्री एरियाज वी हैव टू फोकस.
और इस तीन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है.
इवन इफ वी डू नॉट नो एक्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ हिज कमिंग,
और जबकि हम यीशु के आने की तारीख या समय नहीं जानते हैं,
गॉड जीसस वांट्स अस टू बी रेडी ऑलवेज.
लेकिन यीशु चाहते हैं कि हम निरंतर तैयार रहे.
आई जस्ट वांट टू टच अपॉन सम एस्पेक्ट, सम थिंग्स अबाउट द लॉर्ड्स कमिंग.
और यीशु के आगमन के बारे में और भी मैं चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ.
वन इम्पोर्टेंट थिंग विच नो आई विच हैज कम्फर्टेड मी इज,
और एक जो चीज है जो मुझे प्रोत्साहित की,
अबाउट ही सेड लाइक इन रेवलेशन, वर्ड्स इन रेवलेशन 21:4
और प्रकाशित वाक्य 21:4,
ही विल वाइप अवे एवरी टियर फ्रॉम देयर आईज एंड देयर विल बी नो लॉन्गर, देयर विल नो लॉन्गर बी एनी डेथ, देयर विल नो लॉन्गर बी एनी मॉर्निंग, नो क्राइंग, नो पेन.
वह उसकी आंखों से सब आंचू पोंछ डालेगा, इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी.
सो व्हाट वी कैन सी व्हेन वी सी द लॉर्ड, वी कैन एक्सपीरियंस कंफर्ट ईच वन ऑफ अस।
और हम जब यीशु मसीह को देखेंगे उस प्रोत्साहन की अपेक्षा हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं।
देयर आर अपॉर्चुनिटीज और सिचुएशंस और टियर्स।
और ऐसे हमारे जीवन के अंदर परिस्थिति रही जहां आंसू है।
इट्स अ कंफर्टिंग थिंग, देयर इज अ डे व्हेन द लॉर्ड, व्हेन आई सी द लॉर्ड ही विल वाइप अवे माय टियर्स।
और ये प्रोत्साहन की बात है कि उस दिन यीशु हमारे आंखों से उन आंसुओं को पोंछ डालेगा।
एंड व्हेन वी पासिंग थ्रू स्ट्रगल्स एंड डिफिकल्टी सिचुएशंस एंड टाइम्स ऑफ टियर्स फॉर व्हाटएवर रीजन,
और कोई भी कारण अनुसार हम तकलीफों से संघर्षों से अगर गुजर रहे हैं,
होप व्हिच ईच वन ऑफ अस, द लॉर्ड will wipe away my tears.
यही आशा हमारे पास है कि उस दिन यीशु हमारे सारे आंसू को पोंछ डालेगा।
And this will especially meaningful for those who pass through difficult situations.
और ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो सच में उन तकलीफों से भरे परिस्थिति से गुजरे हैं।
This one important thing which we can cherish in our heart, when I see the Lord, He will wipe away. I really, literally, sometimes tears are rolling when I see that the Lord's that. In the heart to comfort me.
और यहाँ पे जब मैं सोचता हूँ, कई बार आंसू आ जाते हैं कि सच में परमेश्वर ऐसा प्रोत्साहन करता है कि हमारे आंखों के सारों आंसू को पोंछ डालेगा।
Jesus told that blessed are those who mourn, for they shall be comforted.
धन्य है वे जो
those who mourn,
और जो दुख करते खेदित है क्योंकि वे
for those mourn it is certain that the Lord will comfort them.
और जो दुखी है उनको प्रभु प्रोत्साहित करेगा।
Blessed are those who mourn, they will be comforted.
और जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे।
And in 1 Thessalonians 4 also we read after that about the Lord's coming, he said, and in 1 Thessalonians 4 verse 18 he is concluding that therefore comfort one another with these words.
और वहां पे जैसा लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 के अंदर लिखा है,
so the coming of the Lord is always a time of comfort.
और यीशु मसीह का आना हमेशा एक शांतिमय समय, प्रोत्साहन का समय रहेगा।
We can expect the Lord will personally touch and wipe away our tears.
और हम अपेक्षा कर सकते हैं उसके व्यक्तिगत स्पर्श को हमारे सारे आंसू को पोंछ डालेगा।
Sometimes remember, no, we always know our little children when they are, you know, they are upset with something, they feel scared or, you know, they anxious about, they cry, and how we comfort them, we literally wipe away the tears.
और जैसे छोटे बच्चे किसी भी चीज से डरते हैं या उनको किसी भी चीज की समस्या होती है वो रोते हैं, हम उनके पास जाके उनके आंसुओं को पोंछते हैं।
So in the same way, the Lord wants to comfort so personally in an intimate way.
और व्यक्तिगत रूप से वैसे ही यीशु भी हमारे सारे आंसुओं को पोंछकर हमें वो शांति देना चाहता है।
Again, a second thing is, the Bible says that there will be people who will mock when they hear about his coming.
और बाइबल में ये भी लिखा है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जब यीशु के आने का बातों के बारे में वो ठट्ठा मस्करी करेंगे।
सेकंड पेटर चैप्टर 3 वर्स 3 एंड 4,
दूसरा पत्रस 3:3-9।
नो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इन द लास्ट डेज मॉकर्स विल कम विद देयर मॉकिंग फॉलोइंग आफ्टर देयर ओन लस्ट एंड सेइंग वेयर इज द प्रॉमिस ऑफ हिज कमिंग फॉर एवर सिंस द फादर्स एस्लीप ऑल कंटिन्यूज द सेम एज इट वाज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन।
पहले से यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, अब से बाप दादा सो गए, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था।
So there will be always people who mock, including maybe believers, not maybe vocally, but in their heart, in their inside. What is there? You know, we are hearing about this so long. Nothing is happening.
और ऐसे समय में बहुत सारे लोग ठट्ठा करने वाले होंगे, विश्वासी होंगे, और वो शायद मुख से नहीं करते होंगे, लेकिन अपने हृदय से वो ठट्ठा करते हैं।
That kind of attitude.
और इस प्रकार का स्वभाव होगा।
But that passage, Peter said, there is a reason why the Lord is delaying.
लेकिन उस वचन में कारण लिखा है कि क्यों यीशु के आने में देर हो रही है।
In verse 9, 2 Peter chapter 3, verse 9.
9 वचन में,
Lord is not slow about His promise, as some count slowness. But is patient toward you, not wishing any of you to perish, but all to come to repentance.
प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले।
The so-called delay is an expression of his patience towards us.
और वो देरी जो है वो उसके धीरज का एक वो प्रेम है।
He is giving us more time.
वो हमें और अधिक समय दे रहा है।
That there will be repentance and a change of heart.
और ताकि हम पश्चाताप करें और हमारे हृदयों को हम बदले।
Another thing is there God wants us to be when you think about the Lord's coming and that true believers will anticipate and wait for it, look forward and welcome it.
और जब हम यीशु के आगमन के बारे में सच्चे मसीह होने के नाते सोचते हैं, उस चीज को हम सराहे और उस चीज को हम आमंत्रित करें।
That will happen when you know the Lord.
और तो वो तभी होगा जब आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु को जानेंगे।
When you don't know the Lord, it makes no sense to us.
और अगर हम यीशु को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, इस चीज का कोई मतलब नहीं होगा।
In 2 Peter only, in verse 11, we read.
और 11 वचन में लिखा है।
An expression that what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God. 2 Peter 2, you need not read again this translation.
Okay. जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है जो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति के कैसे मनुष्य होना चाहिए।
सो वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड एंड हेस्टनिंग द कमिंग ऑफ द डे ऑफ लॉर्ड।
और हमें आगे बढ़कर उस चीज को और भी ले लेना है यीशु के आने के बारे में।
दैट कुड बी आवर एटीट्यूड।
ये हमारा स्वभाव होना चाहिए।
That will happen when we learn increasingly walk with the Lord.
और ये तभी होगा जब और अधिक अधिक हम यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रूप से चलेंगे।
We know Jesus as our personal Savior, and we faithfully aspire or pursue to walk with Him.
और जब व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करेंगे, उसके पीछे हम चलेंगे।
Paul told, you know, in 2 Corinthians 11 about devil can take us. Our simplicity and our devotion to Christ.
और जैसे दूसरा कुरिन्थियों 11 में लिखा है कि जैसे दुष्ट जो है वो हमारा जो परमेश्वर के प्रति जो हमारा समर्पण है उसे वो ले सकता है।
When we lose our simplicity and our devotion to Christ, the second coming of the Lord is no much meaning to us.
और जो हमारा सादगी और समर्पण यीशु मसीह के प्रति जब हम खो बैठते हैं, तो यीशु मसीह का जो आगमन है वो हमारे लिए इतना शायद रुचि नहीं रखेगा।
The fourth thing I want to mention is.
चौथी बात है।
God wants us to see Him with Jesus wants us to face Him with confidence.
और यीशु चाहता है कि हम उसका सामना जो वो हियाव के साथ एक भरोसे के साथ करें।
Not with a fallen head.
और ऐसा नहीं कि हम एक शर्मिंदा झुके हुए सिर के साथ।
We read that in 1 John chapter 2 verse 28.
पहला यूहन्ना 2:28 के अंदर लिखा है।
Now little children abide in Him so that when He appears you may have confidence and not shrink away from
अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो।
So this is what we should be looking forward. I want to see the Lord with a confidence.
और यही हमारे जीवन में एक आशा हो कि हम यीशु मसीह को एक हियाव के साथ मिलना चाहते हैं।
I don't want to be shrinking away. Or when I see him.
और जब मैं यीशु मसीह को देखूं तब मैं लज्जित होना नहीं चाहता।
May God help each one of us and walk in a good conscience before God and men, so that when we see Jesus, we can see Him with a confidence.
और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि परमेश्वर और मनुष्य के सामने एक अच्छे विवेक के साथ चले, ताकि हियाव के साथ उसका सामना हम कर सकें।
And we are not going to shrink away, shy away from meeting Him.
और जब हम उसे मिलेंगे, तब हम लज्जित नहीं होंगे, या हमारा चेहरा नहीं छुपाएंगे।
So our heart should be established in the truth that Jesus told. It is certain than anything else that he is going to come again.
और परमेश्वर ने कहा कि ये बहुत ही निश्चित बात है कि उसका आना है।
Whether you believe in it, whether you are ready, not ready, Jesus is going to come.
अगर यदि हम उस पर विश्वास करें, तैयार है या नहीं है, लेकिन वो जरूर आने वाला है।
Jesus told the heaven and earth will pass away. But my words will not change.
यीशु ने कहा आकाश पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टलेगा।
So when we it's good to no I thought actually when that happened. How is that going to? Sometimes it's good to imagine or think.
और इस चीज की जब मैं कल्पना करता हूँ कैसे ये होगा जब ये ऐसी घटना होगी?
When we see Jesus, how it's going to be?
और जब हम यीशु को देखें वो कैसा समय होगा?
Actually, when I thought, no, I, honestly, what I feel, I have a bad habit of postponing things.
और मेरे एक ऐसी बुरी आदत है कि चीजों को आगे ढकेलना।
I'll postpone a telephone call. Should I make?
और जो टेलीफोन अगर करना है तो उसको बाद में करूंगा इस तरह से।
I tend to do some work which I'll okay, I'll do it tomorrow.
और कुछ काम करना है तो कल कर दूंगा।
So this word, they say, Lord, I should not be like that. I want to be every day what is entrusted to me. I want to do it today. What I need to do today, I want to do it today, not tomorrow.
और मैं इस प्रकार आगे नहीं बढ़ना चाहता, पर मैं प्रभु आज के दिन में सारी जो चीजें आज करनी है वो आज के दिन ही करना चाहता हूँ।
So do you think that when we see the Lord, there'll be areas when we regret about it?
और जब हम यीशु मसीह को देखेंगे क्या हम सोचते कि ऐसे कोई क्षेत्र के बारे में हम शर्मिंदा होकर सोचने लगेंगे?
I should not have done that. Oh, if I had got another chance.
हम ऐसा शायद सोचेंगे कि शायद मैं ऐसा नहीं करता, शायद मुझे और एक मौका मिलता ऐसा करने के लिए।
By God's mercy, we are still not late.
और प्रभु की दया से हम अभी भी हम देर नहीं हुई है।
It's good to think about it. Not keep that regret pending to be resolved on that day.
और प्रभु की दया के समय में उस जो उस लज्जित होने के समय को हम आगे ना लेकिन अभी पश्चाताप करें.
Will the Lord ask us why you have not forgiven that brother or sister?
अगर यीशु मसीह ने उस दिन आपको पूछा कि क्यों उस भाई और बहन को आपने क्षमा नहीं किया?
I forgave you. Did you forgive that person?
वो कहेगा मैंने आपको क्षमा किया, आपने क्यों क्षमा नहीं किया?
You are so reluctant to forgive someone.
क्यों आपने उसको क्षमा करने में इतनी देर लगाई?
Will the Lord ask us?
अगर यीशु ऐसा पूछता है,
or maybe will he ask us why you did not, did you wherever you did something offense but you chose to be silent, but you did not choose to ask forgiveness.
और आपने ऐसे कोई बुराई की, यीशु पूछेगा कि आपने ऐसे कोई बुरे काम किया लेकिन आपने उसके लिए पश्चाताप नहीं किया.
Will the Lord ask us how you dealt with I have placed in a place of work in your company, how are your dealings with them, did you be as my child?
और यीशु पूछ सकता है कि आपके कार्य के जगह पर आप क्या मेरे संतान के समान लोगों के साथ काम की जगह पर आप रहे?
How about in our home with our wife, husband, our children?
और कैसे क्या आप घर पर आपके बच्चों, बीवी और परिवार के साथ ऐसा आपने वर्ताव किया?
And these are all important.
और ये सारी महत्व की बातें हैं.
And the little things God has entrusted to us, can we confidently say, Lord, I am faithful in the little things I entrusted to you?
और जो पर मी परमेश्वर ने हमें जो छोटी बातें दी है, क्या हम कह सकते हैं कि प्रभु मैं उसके प्रति विश्वास योग्य हूँ?
And we can thank the Lord as we read in you know he is patient towards us. That is one of the reason he is delaying that we may repent and correct our ways.
और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए धीरज धरता है ताकि हम पश्चाताप करें.
I was saying there can be two responses from us.
और मैं सोचता हूँ कि दो प्रकार के प्रत्युत्तर हमारे पास से होने चाहिए.
One is the second coming of the Lord should be a time of thought of excitement and anticipation, and I am looking forward for that.
और पहला यीशु के आने का जो समय मेरे लिए बहुत ही उत्साह और रोमांचक ऐसा एक अनुभव होना चाहिए.
And that is the day the Lord will comfort me.
और उसी दिन परमेश्वर मुझे शांति देगा.
He will wipe away my tears.
मेरे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा.
And I want to hear that word from his mouth. You good and faithful servant.
और मैं प्रभु परमेश्वर के मुख से सुनना चाहता हूँ, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य सेवक.
I want to hear that verse. You are faithful in little things.
ये सुनना चाहता हूँ उसके मुँह से कि तू छोटे में विश्वास योग्य रहा.
So this kind of anticipation, hope we should cherish in our heart.
और इस प्रकार का एक प्रत्युत्तर हमारे जीवन के अंदर हम रखे.
Second thing is we should challenge ourselves and remind ourselves, are we ready?
और दूसरी चीज, हम हमेशा अपने आप को चुनौती देते रहे कि क्या मैं तैयार हूँ.
आर वी रेडी टू मीट हिम इन कॉन्फिडेंस.
और क्या हम तैयार है हियाव और भरोसे के साथ उसे मिलने के लिए.
मे गॉड रियली हेल्प अस डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स.
और प्रभु सच में हमारी मदद करे प्रिय भाई और बहनों.
एंड लेट आवर रिलेशन विद क्राइस्ट देयर इज रियली there is life in that.
और मसीह के साथ संबंध जो हमारा है उसके अंदर जीवन है.
What we has not just a religion.
और वो एक केवल धर्म नहीं है.
But a personal intimate relationship with.
लेकिन व्यक्तिगत और बहुत ही निकट का संबंध वो है.
And when we have that, we'll increasing, we'll his coming will be meaningful to us.
और जब ऐसा जीवन होगा तो हमारे जीवन में बढ़ते हुए हम और भी एक महत्वपूर्ण एक मतलब का जीवन हमारा होगा.
May God bless us.
प्रभु हमें आशीष दे.
I encourage many brothers and sisters to share their testimonies and any word of exhortation which God has done which you have to the church.
और ये समय रहेगा भाइयों और बहनों के लिए, वो कोई भी गवाही प्रोत्साहन का वचन बांट सकते हैं.
Children, young people, brothers and sisters all have opportunity.
और छोटे बच्चे, जवान भाइयों और बहनें, हर एक के लिए मौका है.
And I will encourage especially speak from your life.
और मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आपके जीवन से आप बात करें.
Not just intellectual understanding.
न केवल ज्ञान और उन बातों के द्वारा.
Or something which you heard or read somewhere.
और जहाँ आपने कहीं पढ़ा हो या आपने सुना हो.
It will be encouraging and edifying if you share something little bit about how the Lord is working in our life.
और जब परमेश्वर ने जो किया है हमारे जीवन में, जब हम उसको बांटते हैं, वो आशीषित होता है.
This is one great promise which God has kept for us.
और ये बहुत बड़ा एक वायदा है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है.
It should not be something which we are scared of.
और ये ऐसा नहीं कि जिससे हम डरे.
This is something which we are looking forward to.
लेकिन ये ऐसा वायदा है कि जिसकी हम उसके लिए आशा देखते हैं.
In Corinthians it says that this is the hope which we have. where we do not have hope in this life only on Jesus Christ.
और कुरिन्थियों में जैसा लिखा है कि ये आशा हमें है कि हम केवल इस धरती की बातों की ओर आशा लगाए नहीं रहते.
Because Paul says that if we have hope in Jesus only in this world, then we are more miserable than all the unbelievers.
क्योंकि पॉल उस लिखता है कि अगर हमारे पास इस धरती पर यीशु मसीह के साथ केवल धरती तक ही हमारी आशा है, तो हम अन्य लोगों से भी और भी दयनीय परिस्थिति में हैं.
In 1 John 3:2, when what we read.
पहला योहन्ना 3:2 के अंदर पढ़ा जैसे.
Beloved, now we are sons of God, and it does not appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, and we shall see Him as He is. And every man that has this hope in Him purifies himself even as He is pure.
हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे. इतना जानते कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है. और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है.
इन 1 John 2:25 इट सेज, एंड दिस इज द प्रॉमिस ही हैज प्रॉमिस्ड अस इवन इटर्नल लाइफ.
और पहला योहन्ना 2:25 में लिखा है, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह अनंत जीवन है.
सो ही हैज प्रॉमिस्ड अस दिस, एंड दैट्स व्हाई वी लुक फॉरवर्ड टू दैट.
और उसने हमें यह वायदा दिया, इसलिए हम उसकी बाट जोते हैं.
सो बिफोर आई स्टार्ट ऑल स्टार्ट डिजायरिंग दैट, आई नीड टू हैव दैट लिविंग होप इन मी दैट व्हेन ही कम्स आई विल सी हिम.
और इससे पहले कि मैं एक आशा रखना कि प्रभु वो आने वाला है और उसकी आशा में एक मैं जीऊं, उससे पहले.
सो वी हैव ए होप दैट आई विल सी हिम.
और हमारे पास एक आशा है कि मैं उसे देखूंगा.
इट्स नॉट दैट आई कीप ऑन प्यूरिफाइंग विदाउट दैट होप.
और इसका मतलब ये नहीं कि उस आशा के बिना मैं अपने आप को पवित्र कर रहा हूँ.
दैट आई विल वन डे गेट ए होप. इट्स होप इज लिविंग टुडे.
और ऐसा नहीं कि आने वाले दिनों में मुझे आशा मिलेगी, लेकिन आशा आज है.
दैट होप इज देयर ऑल द टाइम.
और ये आशा हर समय है.
इट्स नॉट दैट वन डे आई विल गेट दैट होप.
और ऐसा नहीं कि एक दिन मुझे आशा मिलेगा.
बट एवरीबडी हु हैज हु इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड नीड्स टू हैव दैट होप लिविंग इन हिम ऑल द टाइम.
और जितने परमेश्वर की संतान है वो उस आशा में है और उस आशा के साथ हम जीते हैं.
बिकॉज ही हैज प्रॉमिस्ड अस इटर्नल लाइफ.
और उसने हमें अनंत जीवन का वायदा दिया.
In Jude chapter,
Yehuda ki patri,
verse 24,
uska 24 vachan.
Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy.
अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है.
सो ही इज एबल टू प्रेजेंट अस बिफोर द फादर विद एक्सीडिंग जॉय.
और वहां पे लिखा है कि वो यीशु मसीह जो हमें परमेश्वर के सामने आनंद के साथ निर्दोष खड़ा करने के योग्य है.
सो ऑल्दो वी हैव अ पार्ट टू प्ले, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इट इज गॉड हु विल वर्क इन अस.
ये हमारा भी एक कार्य है करने में, लेकिन हम इसको ना भूलें कि परमेश्वर जो हमारे भीतर कार्य करता है.
सो ही विल accomplish that if I keep on trusting in him.
और जब हमें उस पर भरोसा रखते हैं वो अपने कार्य को हमारे अंदर पूरा करेगा.
So today when if Jesus comes, I need to have that hope that I will see him.
अगर यीशु आता है मुझ में वो आशा होनी चाहिए कि मैं उसे देखूंगा.
It's not after I become perfect I will get that hope.
और ये ऐसा नहीं कि जब मैं सिद्ध हो जाऊंगा बाद में मुझे वो आशा मिलेगी.
If in 1 John
पहला यूहन्ना
chapter 3 verse 21 it says,
3:21 में लिखा है,
Beloved, if our heart condemns us not, we have confidence before God.
हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है.
So today, if I have a heart which does not condemn me about any sin,
अगर मेरे पास ऐसा मन और हृदय है जो मुझे किसी भी प्रकार से किसी भी पाप के लिए दोषी नहीं ठहराता,
I can have confidence to face Jesus today itself.
तो आज ही मेरे पास परमेश्वर को सामना करने का हियाव होगा.
I don't have to wait for any other day.
और किसी और दिन के लिए मुझे राह देखना नहीं है.
So that is all God wants me to do, that every day I live with a conscience which is not having any awareness of sin.
और परमेश्वर यही चाहता है कि उसी आशा के साथ हम जिए, कि ऐसे विवेक के साथ जिसमें पाप के प्रति आभास न हो, ऐसा विवेक.
That is when I fall, I get up immediately.
और ऐसा विवेक मतलब जब मैं गिर जाता हूं तो तुरंत ही मैं खड़ा हो जाता हूं.
Praise God for the words God spoke to us.
और जो बातें आज हमने सुनी उसके लिए प्रभु का धन्यवाद.
As brother spoke now that if I have a clear conscience with God and man that I don't remember anything that I have not set right, then I have confidence.
अगर मेरे पास एक शुद्ध विवेक है और मुझे पता है कि कोई दोष नहीं है तो मेरे पास हियाव होगा.
मे बी एज फर्स्ट व्हेन वी हर्ड इट इज लाइक फेथफुलनेस इज लाइक इफ आई एम नॉट फेथफुल मे बी आई विल हैव रिग्रेट्स. if I am not faithful in what God has given me, the small things, maybe I will have regrets. But if I have a clear conscience, like if I always strive to maintain a clear conscience, I can be confident that I will see him one day.
और अगर हमारे अंदर विश्वास योग्यता नहीं तो उसके लिए हम शायद उसके ऊपर हम रिग्रेट महसूस करेंगे, लेकिन जब हमारा एक शुद्ध विवेक है तब हम हियाव होगा उसे देखने का.
As brother spoke about that living hope in Christ, always having that living hope.
और जैसे भाई ने बात किया कि एक जीवित आशा जो यीशु मसीह में हमारे पास है.
Like the hope drives us to live like Christ. The hope is the beginning.
और वो आशा ही है जो हमें यीशु मसीह के समान जीने के लिए प्रेरणा देता है.
Like it's one verse is there in 1 Peter,
पहला पत्रस के अंदर.
One Peter 1:3,
पहला अध्याय तीसरा वचन.
It says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who, according to His great mercy, has caused us to be born again to a living hope." Through the resurrection of Christ from the dead, to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you.
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, एक अविनाशी निर्मल अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है.
So it is reserved in heaven, that living hope. I have that hope that one day I will see him.
और एक जीवित आशा है कि मैं एक दिन परमेश्वर को देखूंगा.
I am not striving that I have that hope inside always. So I accordingly I cleanse myself.
और वो आशा हमेशा मेरे अंदर है और उस प्रकार से मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ.
Also when brother spoke about that verse in Matthew 24.
मत्ती 24 में.
24 to 51, like 51-50, the master of that slave will come on a day when he does not expect him, and at an hour which he does not know, and will cut him in pieces and assign him a place with the hypocrites.
और 50 से आगे, उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो, ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो.
So that means hypocrites are already rejected by God.
इसका मतलब ये है कि जो पाखंड करने वाले ढोंगी है वो प्रभु के सामने से त्यागे गए हैं.
So one more thing that I need to remember is, am I a hypocrite? Is there any hypocrisy in me? Am I really living a true life before God?
और एक और बात मुझे जांचना है कि क्या मैं एक ढोंगी जीवन जी रहा हूँ परमेश्वर के सामने.
I may have fallen today also. I may have many areas where I have fallen and I'm not have victory, but do I have that honest heart, Lord? I don't want to act anything that I am not having.
और आज के दिन में शायद बहुत सारे ऐसे मेरे जीवन में स्तर है जहाँ मैं गिरा होऊंगा, लेकिन क्या मैं परमेश्वर के सामने इस बात को मैं मान लेता हूँ कि इस चीज़ों में मेरा संघर्ष और ये पाप है.
He wants to me to always have an honest heart before God.
वो परमेश्वर चाहता है, एक प्रमाणिक हृदय को चाहता है.
Without any hypocrisy, without any type of hiding anything from anyone.
और जिसमें कोई ढोंग ना हो या किसी कोई बात का छिपाना ना हो.
Like if I have some bitterness against someone, I don't hide it inside. I ask God to cleanse me from that bitterness.
और किसी के प्रति अगर कड़वापन है तो मैं उसको मैं छिपा के नहीं रखता, लेकिन उसके लहू से धोने के और शुद्ध होने को चाहता
हूं. And then I don't gossip and backbite about that person because I don't like him. I confess it before God and ask him to cleanse me from that.
अगर किसी व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता, उसके बारे में बुरा नहीं कहता, लेकिन उसको मैं पश्चाताप करता हूं उस बात के ऊपर.
Always maintaining having a heart that has forgiven everyone of everything what they have done.
और ऐसा हृदय रखना कि हर किसी को माफ करना जो भी उन्होंने किया उसके लिए.
And also asking forgiveness even if the worst hurt, to forgive that person, to ask forgiveness from everyone.
और कितना भी बुरा उस व्यक्ति ने हमारे लिए किया, लेकिन उससे माफी मांगना इस प्रकार.
Also God spoke to me that brother spoke about that faithfulness in small things. I was seeing, am I faithful in small things that no one sees? Not the things that people see, but the things hidden that only God sees.
और जैसे हमने सुना विश्वास योग्यता के बारे में, तो वही परमेश्वर याद स्मरण दिलाए कि छोटी छोटी बातें जब लोग मुझे देख नहीं पाते, लेकिन केवल परमेश्वर देख पाता है, उस चीज़ों में विश्वास योग्यता.
एक पीपल विल नॉट वैल्यू दैट थिंग, इट मस्ट बी अ स्मॉल लिटिल थिंग, बट गॉड वैल्यूज दोज थिंग्स इन द स्मॉल थिंग्स. एंड वन डे गॉड इज गोइंग टू टेल मी दैट वेदर आई वॉज फेथफुल और नॉट.
और छोटी छोटी बातें जो शायद लोग महत्व नहीं देते होंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण वो है.
I really want to be faithful in small things, and wherever I have fallen, I want to repent in those areas and always live in that confidence.
और मैं परमेश्वर के प्रति सच में छोटी बातों में विश्वास रहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं मैं गिरा हूँ वहाँ पे पश्चाताप करके उस हियाव में आगे बढ़ना चाहता हूँ.
There is no place for condemnation in Christ. Absolutely no condemnation. If I can live in confidence always.
और यीशु मसीह में दंड की या दोष की भावना कदापि नहीं है, लेकिन एक हियाव हमें हमेशा होता है.
Please.
We should always have faith in God because Hebrews 11:16 says that without faith it is impossible to please God.
और हमें हमेशा विश्वास रहना चाहिए क्योंकि वचन में लिखा है इब्रानियों 11 में कि हमेशा विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है.
Because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.
और जो कोई उसके पास आता है उसे विश्वास करना कि वो है और उसके खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है.
Thank you.
धन्यवाद.
Let's thank God for, hearing so many verses. But Brother Abu was sharing this one verse that he spoke, it's about the coming of the Lord. People say, where is the Lord coming? So much time we heard from so much time that is coming. Like if I see today, 2000 years back, like 2017 years back, this was spoken.
और जैसे यीशु के आने के बारे में हमने सुना कई सारे, जब वचन में भी पढ़ा, कई सारे लोग ऐसे कहते हैं सदियों से कि कहाँ यीशु का आना है, इतने सारे 2000 साल बीतने के बाद भी.
There are so many generations that have come and gone, but
और बहुत सारी पीढ़ियाँ आकर चले गई.
I was sitting and thinking over there, but one thing about I was thinking about the verse, but there's one thing that came to my mind, when I live, how do I live? Forget that thing about what was in the past, but how do I live? Do I really live in presence of God, or I live, a carnal life?
और एक चीज को मैं सोचता हूँ कि पिछली बातों को भूलकर, लेकिन आज मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिता रहा हूँ अभी का समय?
So one thing we are listening, we have heard many times, I have heard many times, Enoch walked with God.
बहुत बार मैंने सुना है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला.
So every day he walked with God. It was not that one day he walked and 10 days he rested and again one day he walked.
ऐसा नहीं कि एक दिन चला, 10 दिन उसने आराम किया और फिर चला, लेकिन निरंतर वो चला.
And says he was so beloved to God and God took him one day.
और वो इतना प्रिय परमेश्वर का था, उसको उठा लिया गया.
So when I think I should compare my life there, do I really walk with God?
मुझे तुलना करनी उसके साथ, क्या मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ?
When I am speaking to others or wherever I am, in my office or at home, how is my, my attitude, my speaking and all that? Is it, I think that, see, God is with me and I am speaking this way.
और जहाँ कहीं मैं हूँ, मेरे काम के जगह, परिवार में, हर जगह, क्या मेरा स्वभाव, मेरा वर्तन, मेरे शब्द इस प्रकार है जैसे यीशु मसीह मेरे संग संग है?
If that is only in the church or with brothers and not others, then I am really a big, hypocrite. I am just fooling around.
और अगर ऐसा अच्छा स्वभाव, ऐसा अच्छा वर्ताव केवल चर्च में ही है और आसपास के लोगों के साथ नहीं, तो अपने आप को मैं मूर्ख ठहरा रहा हूँ.
If I come and speak something, it's all useless.
और यहाँ पर अगर मैं कुछ बोलूँ तो वो सब कुछ व्यर्थ है.
Once yesterday I was reading this part about Paul speaking to the Corinthians.
और इस बात को मैं पढ़ रहा था, पौलुस जो करिन्थियों से कहता है.
If you read Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 2,
पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय
and verse 1
एक वचन से,
and says, and when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God, for I am determined to know nothing about you except Jesus Christ and Him crucified.
यहाँ पे पौलुस कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह, वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं।
And further it goes in verse 3 and 4 says, I was with you in weakness and in fear and in much trembling, and my message, my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of spirit and of power. So that your faith would not rest on the wisdom of men, but the power of God.
तीन वचन से आगे, मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो.
इट्स नॉट अबाउट यू नो लाइक कमिंग एंड यू नो विद एलिगेंट स्पीच एंड शेयरिंग समथिंग यू नो, बट वन थिंग इवन इफ यू रीड दिस पार्ट यू विल सी देयर वाज अ फियर एंड ट्रेम्बलिंग इन हिज हार्ट, इन पॉल्स हार्ट व्हेन ही इज स्पीकिंग एंड शेयरिंग थिंग्स, बिकॉज़ दैट वन थिंग ही वांटेड दैट पीपल शुडंट believe on his earth, on this earthly vision or the vision of man, but the all should rest, you know, all should believe in the power of God.
और पॉलुस यहाँ पे लिखता है कि उसने ज्ञान की और लुभाने वाली ज्ञान से बातों से बात नहीं किया, लेकिन वो एक ही चीज़ यहाँ पे कहता है, थरथराते हुए कहता है, और वो चाहता है कि परमेश्वर के सामर्थ को लोग देखें उसके जीवन से.
So every day in my life when I'm walking, do I really walk with God and I really all my understanding, my faith, daily does it really rest on the power of God?
और क्या मैं प्रतिदिन के जीवन में उसके सामर्थ्य में चलता हूँ, क्या मेरी समझ में मैं उसके ऊपर निर्भर हूँ?
टुडे वन थिंग आई हैव लर्नड इन लाइफ लास्ट 20 इयर्स, वन थिंग आई हैव लर्नड इन लाइफ इज इट्स नॉट अबाउट माय सराउंडिंग्स, यू नो अबाउट माय पीपल हु आर विद मी और दैट, बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माय रिलेशनशिप विद क्राइस्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग.
और पिछले 20 सालों में इस बात को मैंने सीखा कि मेरे आसपास के लोग महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन मेरा जो संबंध है, जो मैंने यीशु मसीह के साथ जो जीवन जिया है, वो महत्वपूर्ण है.
As the word of God says, first you seek the kingdom of God and his righteousness and other things, you know, whatever things are there in life will be added, it will be done through, but the most important thing is me and Christ.
और जैसे यीशु ने कहा, पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें दे दी जाएगी. महत्व की बात यीशु को खोजना है.
If you read one more verse in 1 John,
पहला योहन्ना में पढ़ते हैं.
1 John chapter 2,
पहला योहन्ना दूसरा अध्याय
and verse 28,
28 वचन
says, now little children abide in him so that when he appears we may have confidence and not shrink away from him in shame at his coming.
अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो.
When I think of the coming of Christ, I think I have my main thing. God wants me to have confidence, you know, like really be happy, like that way I am living. I am trying to purify myself. I want to see Christ. The main thing is have confidence in all those things.
और यीशु मसीह के आने के समय पर मेरे जीवन के द्वारा, मेरे हर चाल चलन के द्वारा ये हियाव मुझे होना चाहिए.
But the first foremost thing is here it says abide in him.
लेकिन पहली चीज लिखी कि उसमें बने रहो.
Abide, you know, the most important thing is abide. Listening words are really good to listen, but when you put into practice are really hard.
और जब सुनना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीजों को कार्य में लाना बहुत तकलीफ वाला है.
But what things are impossible for men is really possible for God.
और जो बातें पर मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है.
So if I really trust in God and really as Bijoy was sharing, I confess my sins and I really go to God and say, God, my confidence, my thing, all rest in you and you can change my life.
और अगर सच में अपने पापों से प्रायश्चित करके परमेश्वर के सामने जाकर कहे, प्रभु सच में मेरा हियाव, मेरा भरोसा केवल तुझ में है.
इफ यू गो टू द सेम चैप्टर 1 कुरिन्थियस चैप्टर 2,
पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय में
and verse 9.
No vachan.
Things which eye has not seen, ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love him.
जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार
की है. The things which I have never believed, that I thought will never happen.
और जो ऐसी बातें जो मैंने कभी विश्वास नहीं की कि कभी ऐसा हो सकता है.
The things that are really impossible.
और ऐसी बातें जो बिल्कुल असंभव थी.
But God makes all these things possible. He had great plans for people who really love him.
और लेकिन परमेश्वर उन सारी बातों को संभव करता है और उनसे जो प्रेम करते हैं उनके लिए बड़ी योजनाओं को रखता है.
So really pray God that he'll help us, help me most importantly, like, you know, like to have that faith and trust in him, that my every day will be a walk with him. It won't be just a talk. But a walk with him.
और परमेश्वर सच में मेरी सहायता करे कि परमेश्वर के वचन के केवल सुनना नहीं, बातें नहीं, लेकिन उसके ऊपर मैं चल सकूं.
Where I can really entrust all my things to him, like you know, where verse says, you know, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths.
और ऐसा जीवन जहाँ मैं सारी चीज़ों को परमेश्वर पर डालूँ। वचन कहता है कि अपने मार्ग की सारी चिंता उस पर डाल दे।
सो मेरे लिए गॉड हेल्प अस,
परमेश्वर हमारी सहायता करें।
मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ
हिंदी।
Matthew 6:22, your eyes are like a window for your body. When they are good, you have all the light you need. But when your eyes are bad, everything is dark. If the light inside you is dark, you surely are in the dark. जब मैं ये वजन पढ़ा तभी मेरे को ऐसा लगा कि मेरे अंदर पूरा अंधकार है, मैं मसीह को नहीं देख पा रहा हूँ। आप सब लोग मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि मसीह का लाइट मेरे अंदर आना चाहिए और वजन ज़्यादा मेरे को पढ़ना चाहिए। मैं जनवरी में ऐसा फर्स्ट को इधर खड़ा होकर बोला इस साल पूरा पढ़ने का है, पर कुछ भी नहीं हुआ। अभी जुलाई हो गया, प्लीज़ प्रे फॉर मी।
मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में प्रभु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है और हमें इस बात से पूरी तरह से जागृत रहना चाहिए। पिछले हफ्ते में भी जो हमने बदराबू ने सिखाया कि हमारे जीवन में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो मैं भी अपने आप को जांचता हूँ कि मेरे अंदर क्या प्रेम है, क्या मैं प्रभु से सचमुच में प्रेम करता हूँ या कुछ दिखावा है। तो यदि हम अपने आप को जाँचेंगे नहीं तो हमें और कौन दूसरा जाँचेगा, क्योंकि हम प्रभु के हैं। और इन दिनों में जो वचन आ रहे हैं कि हमें प्रेम से हमें रहना है, और प्रभु का वचन भी कहता है यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और लुका उसका 11:28 में भी लिखा है कि धन्य है वे जो मेरे वचन को मानते हैं और उन पे चलते हैं। प्रभु कितना अच्छा है कि जो उससे प्रेम करता है और उसकी आज्ञाओं को मानता है, प्रभु उनको धन्य कहता है। प्रभु हम सबको धन्य कहता है कि हम उसके वचन को सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम उसके वचनों पे चल रहे हैं। प्रभु का आगमन बहुत ही जल्दी होने वाला है, जैसे लिखा है कि वो डेट और तारीख प्रभु ने नहीं बताया, कभी भी आ सकता है। तो आज हमें जागृत रहने की बहुत ज़रूरी है, हमें जागना है। जागना मतलब इसका मतलब यह नहीं कि हमें सोना नहीं है, हमें अपने आप को तैयार करना है उस आगमन के लिए, प्रभु से मुलाकात करने के लिए। जब प्रभु आएगा तो क्या मैं उसके सामने खड़ा रहूँगा, क्या मैं उसको देख पाऊँगा। बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था कि यदि प्रभु आज आ जाए तो क्या मैं ही आप कर सकता हूँ कि मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊँ। कदापि नहीं, क्योंकि मेरे अंदर तो अभी भी बहुत सारी बातें हैं और शायद इसलिए देर कर रहा है कि मैं सुधरूँ। मेरी कमी बहुत हैं, बहुत सारी घटियाँ हैं मेरे अंदर अभी भी। यही शायद प्रभु यही बातों का इंतज़ार कर रहा है कि उसकी कलीसिया अच्छी हो जाए, मैं अच्छा हो जाऊं बिना दाग के, कोई भी दाग ना हो, ताकि मैं प्रभु के सामने पूरी तरह से निर्भय के साथ खड़ा हो सकूं। प्रभु का वचन कहता है मती में जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमारे जीवन में प्रार्थना का कितना बहुत बहुत बड़ी ज़रूरत बात है। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो शायद हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे भाई ने बोला अभी कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं बाइबल पढूं, सही बात है। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो शायद हम बाइबल भी नहीं पढ़ पाएंगे। हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करके, प्रेम करके उससे बोलना है कि प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। हम लोग तैयार तो हैं, यहाँ बैठे बैठे सोचते हैं कि अब मैं ये नहीं करूँगा, अब मैं वो नहीं करूँगा, मैं अच्छे से अब रहूँगा, लेकिन शरीर की दुर्बलताओं के कारण हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं। हर संडे को हम लोग कुछ ना कुछ नया सुनते हैं, नया सोच के जाते हैं, पूरी तरह से नए होके जाते हैं और हफ्ते भर में फिर से ठंडे हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही बैठे बैठे सोच रहा था कि हमें अब तैयारी का दिन है और हमें तैयार रहना है। हमें पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना है, अपने मन को, अपने हृदय को, जो हमें सिखाया है कि विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों चीज़ें। तो हमारा विश्वास कहाँ है, हमारी आशा किस पर है और हमारा प्रेम किस पर है? संसार पर प्रेम है या प्रभु यीशु पर प्रेम है या अपने कलीसिया से प्रेम है? हमें आज प्रभु ने एक चुनौती दी है हमें कि अपने आप को जांचो। इन दिनों में सही में प्रभु का आगमन बहुत जल्दी हो रहा है और जो प्रभु के लोग हैं उन पर कुछ ना कुछ विपत्ति तो आती हैं। हम लोग देख रहे हैं, चर्चाएं सुन रहे हैं, कहीं किसी को प्रभु के लोगों को कोई गोली से मारता है तो कोई कुछ करता है, कोई घरों को जला देता है, क्योंकि अंतिम समय। और पिछले हफ्ते की बात है, मेरा ऑफिसर ने मुझे, मेरा नंबर उसके पास है, बड़ा अधिकारी है, ऑफिसर है, उसने मुझे डायरेक्ट फ़ोन किया और मेरे को बोलता है कि सिंह तुम्हारा कंप्लेंट आया है मेरे पास में। मैं बोला क्या है सर? बोलते हैं तुम धर्म परिवर्तन कर रहा है, मैंने सुना है तुम लोगों को सुसमाचार देते हो और ये अच्छी बात नहीं है। अगर किसी ने राइटिंग में दे दिया मैं आपके ऊपर एक्शन लूँगा। तो थोड़ा डर आया मेरे अंदर और जैसे ही मैं पानी पीने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे गया तो भाई ब्रदर राजेश भी वहाँ पर मिले, रहा नहीं गया। मैंने तुरंत उनको बताया भाई ऐसे ऐसे बात है, भाई ने बोला हाँ प्रार्थना करेंगे। सचमुच में इन दिनों में हमें कैसे रहना है, हमें जागते रहना है। और ये पिछले हफ्ते की बात है, मैंने घर में अपने मिसेज को भी नहीं बताया क्योंकि वो बहुत सारी बातों में चिंता करने लगती है। तो अभी कल परसों ही मैंने रहा नहीं गया और मैंने बता दिया तो उन्होंने बोला पहले से क्यों नहीं बताया, मैं प्रार्थना करती थी इस विषय को लेकर के। हम सब जितनी बहन है, सिस्टर हैं, सब फ्राइडे को जो मीटिंग, लेडीज़ मीटिंग में प्रार्थना करती हैं, मैं सब सिस्टरों को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारी चिंता करती हैं। तो बोलते हैं कि इस विषय को हम मीटिंग में रखते थे, प्रार्थना में प्रार्थना करते थे। तो मैं बोला हाँ मैंने भी प्रार्थना किया है और सचमुच में परमेश्वर हमारी सुनता है। दो दिन पहले ही वो ऑफिसर मुझे मिला और मैंने कहा कि सर आपने जो फ़ोन पे बोला है तो उसके विषय में क्या है, कहाँ मेरी गलती हुई है? तो शायद प्रभु ने उसके हृदय को बदला। तो बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, फिर बात मिलेंगे। और फिर मिलेंगे तो मैंने बोला प्रभु अब फिर आप ही देखते रहो उसे, मैं इसके पास दोबारा नहीं जाऊँगा। और सचमुच में उसने मुझे नहीं बुलाया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब हम उससे प्रेम करते हैं तो जैसा लिखा है कि जो उससे प्रेम करते हैं तो प्रभु उनकी सुनता है। सचमुच में हमारा जिंदा मसीहा है, हमारा प्रभु है, वो हमारी सुनता है, हमारी कमजोरियों को वो देखता है, वो हमें बल देने वाला परमेश्वर है। सच में प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, भाई के द्वारा जो हमें तैयारी करने के लिए, जो हमें समाचार सुसमाचार मिल रहा है कि हमें तैयार रहना है, जो मैसेज मिल रहा है तो उस तैयारी के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है और प्रभु से मांगना है कि प्रभु आप ही हम सबकी सहायता मदद करो। और प्रभु हम सबकी सहायता मदद करता है, उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।